काम न परस्परणी काम
न दूसरे इन्होंने सिखाया न दूसरे किसी ने सिखाया।
यह तो स्वाभाविक रूप से मेरी बुद्धि भगवान में लगी हुई है,
ऐसी बुद्धि दूसरों भगवान में नहीं रख सकती।
मंदिर में कृष्ण परमेश्वर तो हुआ,
लोग जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं
कि संसार की ज्यादा यंत्रणा इस दुख अंत में बन करके हम प्रभु का कम से कम तो भजन करते हैं, कोई भगवान का नाम कर रहे हैं, कुछ उनका स्मरण करें,
इनको भूल नहीं पाता।
अपने ओर से हजारों व्यक्ति उनको सुनाया करते हैं दूसरों के उपदेश से,
किसी प्रकार से चित्त भगवान में नहीं लगता है।
क्यों?
इसलिए कि अजितेंद्रिय
इंद्रिया विषयों में का आदर हो रही है।
दूसरी तरफ
गृह में भी घर को खूंटा बना रखा है, एक मकान बनाया और उसी को खूंटा गाड़ करके उसके चारों ओर घूमने लगे, कैसे इस घर को सजाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसी घर के लिए। इसलिए अपने भोगों के लिए, अपने सुख के लिए जिसमें वहां आ सकती है, इस प्रकार गृह में भी बनेंगे गृह व्रतिक, उसमें भी चर्बी तो चलो वहां हम दिन रात जिन विषयों को भोग रहे हैं उसी को रोज प्रतिदिन भोग के जा रहे हैं, फिर भी निवृत्ति नहीं, और दिन रात कर्म करते करते इतने अंधकार में अंधेरे में चले जा रहे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, तभी श्रम घोर नरक में चले जा रहे हैं, और एक प्रकार के दुख कष्ट ज्यादा यंत्रणा को भोग रहे हैं नरक यात्रा में। तो ऐसे जीवों की बुद्धि भगवान में नहीं लगती और वे भी नहीं जान पाते हैं कोई फाटने की गति भगवान के सुन है। वे तो जानते हैं, संसारी लोग जानते हैं कि धाम दौलत रुपया पैसा ही यही परमात्मा है, यही भगवान है, जिसके पास रुपया है वही महान है। इसलिए धाम दौलत ये समस्त हो जाए और इसके द्वारा हम सुखी होंगे, खाना पीना भोग मिला इसी को जो बहु आनंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंधा जब हम गई रूपनीय माना, एक अंधा ऐसे दूसरे अपने को पकड़ करके चलते चलते जैसे गड्ढे में गिरता है। इसी प्रकार संसार जी भोगों में आसक्त होकर अंधकार गड्ढे में गिरे हुए हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं।
वो शिष्य और गुरु दोनों जाते हैं।
जिस प्रकार गुरु शिष्य समाज में रहने वाले जो गुरु ब्राह्मणी कर्म मार्ग में फंसे हुए हैं, ज्ञान मार्ग में फंसे हुए हैं, और उसमें चल करके बड़े बड़े ज्ञानी गुरु बड़े बड़े कर्मी सब अंधकार उस गड्ढे में गिरे हुए उसमें से निकल नहीं पाता। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मैं काम अतिस्तावत पुरुष तमाम ऋण भगवान के चरण कमल को स्पर्श करना बड़ा कठिन है, बुद्धि भगवान में लग नहीं पाती है और संसार का अनर्थ मायाजाल छोटा भी नहीं है, अनर्थ दूर नहीं होता, कैसे होगा। मही यम पाद रजो भी ठीकम निश्चिन चराना न प्रिंत जाओ, जिन लोगों ने एकमात्र भगवान कृष्ण को सार किया है ऐसे राधा माधव की उपासना करने वाले निश्चिंचन महापुरुष वैकांतिक प्रेमी भक्त, ऐसे भक्तों के चरणों में जब तक आश्रय ग्रहण नहीं हो, जब तक अपने जीवन को समर्पित नहीं कर रहे तब तक आत्मा की शांति कदापि नहीं हो सकती। एक प्रकार प्रहलाद है पिताजी को और सभी सभासदों को सुना दी, परंतु पिताजी रूप बड़ी जोर से बिगड़े बोले कि अरे मरी दृष्ट को रूपी चंद्र वंश को काटने के लिए ये पुराने के समान आ गया, ये पुराने के ये बेटा भगवान विष्णु जो हमारे शत्रु है इसे प्रहलाद के द्वारा हमारे वंश को समाप्त करने के लिए इसी को भेजा, इसलिए इसको अभी रखो और ये सर्वनाश का कारण है, इसको अभी मार डालो, जितने भी रिश्तेदार हैं सबको बुलाया, बोले अभी इसे मारो। प्रहलाद को मारने के लिए सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के उठ गए, प्रहार करने लगे, चोर कहने लगे, परंतु संध्या जैसे के वैसे खड़ी, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाता है। जो लोग मारे को आता है, जो लोग आता है मारे को आते हैं, उन्हीं के शरीर में उल्टा चोट लगता है और वो मारे मारे भागते। इस प्रकार सभी लोग तो मारे मारे भागते, कोई उसे मार नहीं सके, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आज तो यह लगता कि उसे दो आंखों की जगह चार आंखें हो गई बड़ी बड़ी। अरे इस प्रहलाद को मार नहीं सका, ये क्या हुआ? ये तो साधारण नहीं है, इसे कैसे भी मारना होगा। बोले कि ले जाओ पहाड़ की चोटी में और ऊपर से गिरा देना। पहाड़ के ऊपर से गिरा दी गई, परंतु गोविंद परिगम भी कर भगवान गोविंद जी तो अपने भुजाओं के द्वारा सुरक्षित करके रखे हो, तो उनको कौन बिगाड़ सकता है। ऊपर से गिरा दिया, प्रहलाद जी को लगा कि मैं किसी गोविंद किसी गद्दे के ऊपर में आकर के बैठ गया। भगवान गोविंद ने उनको अपने भुजाओं के द्वारा सुरक्षा कर दी, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। पत्थर गले में बांध करके पानी में फेंकवा दी, पत्थर तैरता रहा पानी के ऊपर, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। सांप के सामने छोड़ दिया, सांप काटता भी नहीं, बाघ के सामने छोड़ दिया, बाघ जैसे अपने बच्चों को लाल प्यार करता है चाहता है उसी तरह से लाल प्यार करता है। हाथी से पिटवाया, परंतु हाथी उसके ऊपर पैर में भरे हाथी आगे निकल गए चल रहा है। इसी तरह से जितना जितना प्रयास किए सारे प्रयास व्यर्थ हो गया। उस समय सोचने समझने लगे, सोचने विचारने लगे कि कैसे प्रहलाद को मार नहीं सकते। यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं होली का जलाई जाती है, होली उत्सव मनाया जाता है, दो पूर्णिमा पर कि होली का जो थी वो हिरण्य कश्यपु की बहन, उससे ऐसे वरदान मिला हुआ था कि आग में वो जलेगी नहीं। हिरण्य कश्यपु ने कहा, बहन तुम प्रहलाद को जलती हुई आग में, तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर के जलती हुई आग में प्रवेश कर जाना, तो प्रहलाद जल जाएगा, तुम आग से निकलोगे। चलाना क्योंकि तुम्हें वरदान मिला है। सही है, मैं सचिव के आदेश को पालन करती हुई होली का प्रहलाद को लेकर के आग में प्रवेश करी, परंतु वरदान अनुसार में बदल गया, होली का जल करके राम बन गई। प्रहलाद जैसे के वैसे रह गए, आग शीतल हो गई। तो इस प्रकार सब प्रकार का धर्म कर लिए, उसे बिगाड़ नहीं।
और संकेत में बोलो
तो हिरण्य कश्यपु को आप चिंता में पड़ गए और क्या करें। उधर वे संध्यावत भीड़ से आए, आकर के बोले, हे महाराज, अभी हमारे पिताजी शुक्राचार्य अभी शुक्राचार्य जी लौटे नहीं है, और वे आ जाए और इस प्रहलाद को दे दीजिए, हम लोग पढ़ाते रहे और उनके आने पर वे समझा देंगे, तब ये बालक सुधर जाएगा। अभी इसका बालक पर है, इसलिए ये बालक भट में पढ़ा मिला है। जब ये बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब इसकी बुद्धि बदल जाएगी, फिर संसार धर्मों में संसार में ले जाएंगे, काम धाम में फिर वो सही हो जाएंगे, इसलिए इसको दे दीजिए और कुछ दिन पढ़ाए। ऐसा कह करके संध्यावर के दोनों प्रहलाद को ले करके चले, ले जा करके पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते एक दिन संध्यावर के किसी काम के बस काम से कहीं बाहर निकल गए, चाहे कि तुम बच्चों के साथ तुम लोग पढ़ना लिखना, हम लोग दो चार दिन में लौट के आएंगे। तो इस प्रकार संध्यावर के दोनों तो चले गए और बच्चे साहब खेलने घुसने के लिए प्रहलाद को हाथ पकड़ करके खींचने लगे, भैया चलो हम खेलेंगे। इतने में प्रहलाद जी ने समस्त बच्चों को बैठा दिए, बोले कि भाई हो तुम लोग बैठो मेरे पास, कुछ सीखता हूँ मैं, कुछ बातों को कहता हूँ, इन बातों को सीख लो, इसके बाद हम खेलेंगे। कैसे खेला जाता है खेलेंगे, कितना कह करके उनको बैठा दिए। बैठा करके प्रहलाद जी बोले कि देखो भाई हो, बहुमार आज भी प्राप्त धर्मान भगवतान दुर्धर्मा मानसम जन्म सदस्य ध्रुवम अर्थतम। देखो यह मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, क्षणभंगुर मनुष्य शरीर थोड़ा सा समय हमें मिला है, इस समय में केवल खेलने कूदने के लिए और हंसने खेलने के लिए केवल भोग विलास के लिए हम नहीं आए हैं, हम आए हैं कुछ परमार्थ करने के लिए। मनुष्य जीवन में केवल आर्थिक संपदा भौतिक संपदा नहीं पारमार्थिक संपदा भी जीवन में प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए बचपन से ही भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। यही सनातन धर्म और भागवत धर्म है कि भगवान विष्णु की आराधना करना, उनकी आराधना करने से भी अभी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रसन्न होने पर संसार में न तो कोई अभाव रहता है न किसी प्रकार की कोई कमी रहती है, अतुल परिवर्तन के होने पर एक व्यक्ति शांति नहीं पा सकता है, न उसके अंदर कोई अभाव मिल सकता है, और कुछ भी न होने पर भी जो प्रभु की भक्ति करता है वह यथा लाभ संतोष है, और वह संतुष्ट रहता है प्रभु की भक्ति करते हुए परम शांति को लाभ करता है और भगवान के लोक में चला जाता है, इस संसार में नहीं रहता है। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने का कोई अधिक प्रयास नहीं रखता है, अनायास से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कोई प्रिय भाव से बंधु भाव से सखा भाव से पुत्र भाव से किसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो भगवान उनसे प्रतिभूत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सब प्रयास न कर सकते यथा आयु वयस पर वृद्धा प्रयास हमें नहीं करना चाहिए केवल भोगों को भोगने के लिए, अतुल संपदा अतुल खजाना हमारे पास हो जाए इसके लिए वृद्धा प्रयास करके वैसे ही इस आयु को गवाने से कोई काम नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और ये सब चले गए, इसलिए इस संसार में कोई चिरकाल नहीं रहता। भगवान बुद्ध की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है और किसी भी प्रकार से नहीं, एकमात्र उनके चरण कमल नहीं कर दिया। अतः मनुष्य जीवन जो मेरा है 100 वर्ष की आयु, 50 वर्ष तो सोने में चला जाता है और उसमें बुढ़ापे में 20 वर्ष 80 से लेकर 100 वर्ष तक कोई काम का नहीं रहता है, और बचपन का जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक खेलने कूदने पढ़ने लिखने में निकल जाता है, तो कितना समय बचता है केवल 10 वर्ष बचता है। तो दिन के युवा काल में 10 वर्ष की आयु मात्र मिली है और इतने समय में हम कर्म मार्ग में भोगों में फंस जाते हैं और मृत्यु के सिर पर पैर धर करके हम बड़ी कठिनाई से अर्थों का संग्रह करते हैं, अर्थ संग्रह करते हुए हम घर गृहस्थी बनाते हैं और उसके बीच में हम फंस जाते हैं, ऐसे हम मकड़ी के जाल की तरह फंसते हैं जैसे ये रेशमी कीड़े वो घर बनाता है, घर बना करके उसका कोई भी दरवाजा नहीं होता, उसके अंदर रह जाता है और उसके अंदर रह करके वहीं पर असली जन खत्म हो जाता है, वहीं पर वो मर जाता है, उससे निकल नहीं पाता, वहीं पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हम लोग इस घर को बना करके दूसरे परिवार बंधु बांधव आत्मीय सहयोग उनके लाड़ प्यार में प्रेम में हम वर्ष वशीभूत हो गए और हम दौड़ विषय सुख में भोगों में इस प्रकार प्रमत्त हो गए कि हम उसमें समाप्त हो जाते हैं, इस प्रकार हमारा जीवन बर्बादी में चला जाता है। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, अति अल्प काल में थोड़ा सा प्रभु का नाम लें, भगवान का कीर्तन करें, प्रभु के नामों का कीर्तन करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, उनके लीलाओं का स्मरण करें, उसी से कल्याण हो जाता है। इस जगत का धाम दौलत पुत्र परिवार विद्या बुद्धि पांडित्य अभिमान अहंकार ये सब के द्वारा प्रभु को पाया नहीं जा सकता है, जैसे कि पृथ्वी अमूल्य या
एकमात्र निर्मल अहित की भक्ति के द्वारा जैसे प्रभु को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के नाम का निरंतर कीर्तन, उनका स्मरण है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने समस्त बालकों को उपदेश दिया। यही तक कहते मैं अपना वस्तु पर
इसमें बहुत सी और भी बातें हैं, पीछे से समय होने पर हम लोग बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा, अब 15 मिनट समय है, अब 15 मिनट के समय में आपको कुछ थोड़ी सी ब्रज का लीला का को थोड़ा सा चस्का देना चाहता हूँ। कृष्ण जी पैदा हुए यशोदा मैया के घर से। यूँ तो मथुरा में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ कंस कारागार में, किंतु वहाँ पर कुछ अंशों में ही हुआ, असल में जन्म हुआ यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में। यहीं पर पढ़े, यहीं पर पोसे गए, यहीं पर कुछ बड़े हुए। जब 2.5-3 वर्ष के हुए और वो तो सुंदर मैया यहाँ पर मूल मुकुट पहना देती, छोटे बचपन से ही बंसी रखते और सारे लोगों का आकर्षण करते, इसलिए उनका नाम कृष्ण। जब थोड़े से और बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, अपने लंगोटिया यारों के सहित, दाम सिदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि के सहित में ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करने लगे। पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते, गोपियां कभी पकड़ लेती तो मुस्कुरा देते, कहते कि मैया हमने समझा लिया ये मेरा घर है, तुरंत ये तेरा घर है, तू मेरी मैया नहीं है, बस मुस्कुरा देते, हाथ छुड़ा करके भाग जाते। कभी किसी के घर में पहुंच जाते मक्खन में कि हड़िया में हाथ लगाया, इसने में गोपी ने पीछे से पकड़ लिया, अरे तू अभी से चोरी सीखने लगा, मैया मैं चोरी कहा कर रहा, तो क्या कर रहा, अरे हमारा बछड़ा इसमें कूद गया था, इसको मैं ढूंढ रहा था इसलिए मैं, अरे तेरा बछड़ा इसमें कैसे कूद गया, तो उसमें हाथ लगाया और एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो बाबा ने खेलने के लिए दिया उसमें है ये देखो तो, और हंसने लगे बस हाथ छुड़ा करके। किसी गोपी ने वो यही चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आए, नंदा धड़ंगा छोटा सा बच्चा, सभी चाहते थे कि हमारे घर में आए, मक्खन दें हम खुद ही दें, तो क्या हमारे घर में मक्खन नहीं, हमारे घर में मैया हमारे लिए मक्खन नहीं रखती, ये तेरे घर से खाऊं, किंतु उनको चोरी करना ही अच्छा लगता है। माने मक्खन चोरी क्या करना है, लोगों का दिल चोरी करना है। बड़ी बड़ी जन्मों में तपस्या की थी, इसलिए ये कृष्ण स्वयं भगवान होकर के सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड होकर के और उनके घरों में मक्खन नहीं प्रेम की चोरी करते हैं, उनके हृदय को चोरी करके रख लेते हैं। इसलिए जिसके घरों में जाते हैं वो फिर जीवन में उनको नहीं भूलती, उनका हृदय चोरी कर करके चले जाते हैं। किसी समय एक गोपी ने उनको पकड़ लिया, फिर क्या कर रहा तू हमारे घर में चोरी करने के लिए आई इतने सदरे अंधकार में, पकड़ आज मैं यशोदा जी को सखी को ले जाऊंगा तुमको, और वहीं पर कहूंगी तुम कहती है ये विश्वास नहीं करती ये कभी चोरी करता है, आज मैं खुद पकड़ कर चले जाती हूँ, ये कह करके गोदी में उठा लिया और अपने अंचल से ढक दिया। अरे सखी यशोदे 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 सुन, देख तो तू मेरी बात नहीं मानती, देखो तेरा लाला ये क्या कर रहा है, उसको आज पकड़ करके ले आई हूँ, उसके मुख में और हाथ में अभी मक्खन लगा हुआ है, देखो। यशोदा जी दौड़ती, अरे हमारा लाला तो सो रहा है, ये किसको ले आई, उठा करके अंचल देखा जो गोपी लाई थी उसी का बेटा। इतने में कृष्ण करके उठे, मैया रोज इसी तरह से झूठ बोलती हैं, और मैं आज से जरूर नहीं के घर में चोरी करने के लिए जाएंगे, ऐसी ऐसी ये लीलाएं करते हैं। सारे ब्रज के लोग कृष्ण को चाहते हैं हमारे घर में आए, उसको दूध पिलाएं, उसको स्नेह करें ये बचपन से। राम की लीलाएं बड़ी सुंदर है, काकभूषुंडी इत्यादि का आप लोग तो पढ़े हैं ना, कृष्ण की लीलाएं इतनी मनोहर और हैं जो आप लोग जब देखेंगे तो सुनेंगे। एक दिन यशोदा जी ने सोचा ये मेरा लाला इतना ठीक हो गया, सचमुच में क्यों हो गया, सोचा जी हमारे घर का मक्खन ज्यादा खट्टा होता है, दाइयां दासियां ये दधी मंथन करती हैं, दधी बनाती हैं और इसलिए खट्टा होता है, इसलिए ये खाता नहीं है। और दूसरों के घरों में बड़े अपने आप वो संजो दे करके और उसका दही बनाती है, बड़ी मीठी लाल लाल होती है, ब्रज की मीठी दही दही देखेंगे भूल जाएंगे सब। हाथ डालेंगे सब घी से तर भर हो जाएगा, साबन देना पड़ेगा, इतना मीठा आदि मक्खन जो क्या कहें। आज मैं खुद अपनी पद्म गंधा गायों को दूंगी और अपने आप उसे जमाऊंगी, अपने हाथों से मंथन करके देखूं तो कैसे नहीं खाता है। फिर करो घरों में से करने के लिए दिन था दीपावली का, उन्होंने शक्तियों को कहा जैसे कि अपने अपने घरों में जाओ दीपावली का त्यौहार मनाओ, आज मैं खुद ही ये सब कर करके और सवेरे मैं दधी मंथन कर लूंगा और तुम इसके बाद में तुम लोग आ जाना। सब शक्तियां चली गई। रोहिणी मैया भी बलदेव को लेकर के उपानंद जो नंद के बड़े बाप भैया हैं उनके घर में चली गई। अब यशोदा जी अकेले रह गई, कोई भी दास दासी कोई ब्रजवासी नहीं। सवेरे उठी भोर में दूसरे दिन अपने हाथों से दही जमाया, बहुत सुंदर दही, और एक खंभे में वो रस्सी को लपेट दिया और मंथनी में उसे लगाया और घर घर इस तरह से करती है। अरे पचासों या एक मन दो सौ मन दो मन दस मन हो तो यह ऐसे मंथनी से नहीं होगा। यशोदा जी का भी मंथनी नंदगांव में रखा गया है देखने के लिए, उसमें दस बीस मन आ सकता है और दधी की मंथनी। और यशोदा मैया कितनी अपूर्व सुंदरी होंगी इसी से समझ लें कि उनका इतना लाला सुंदर यह जगत को आकर्षण करता है। यहाँ तक पशु पक्षी मृग यहाँ तक कि हिरण तक भी मुग्ध हो जाते हैं। तो यशोदा जी कैसी होंगी, सुन बहुत सुंदर, बस तक छल चौड़ा, कमर पतली जरा झुकी तो जरा टूट न जाए और रेशमी वस्त्र ऐसे पहनी पहनी है मानो भीतर से सौंदर्य वो झांक रहा है और तन्मय होकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए और वो गायन करते हुए और तन्मय होकर के दधी मंथन कर रही है। कृष्ण को पल्ले में चुला दिया है जरा दूर, जो घर घर से आवाज से उठ न जाए और दारा दूर रह करके ये घर घर उसको मंथन कर क्या कर रही है। ऐसा करती हुई हाथ की चूड़ी मानो करताल है मीठी मीठी जोड़ी होती है ना जोड़ी है, और घर घर जो शब्द दधि मंथन से उठ रहा है वो मृदंग का शब्द मानो भिक्तान भिक्तान भिक्तान। उन लोगों को धिक्कार है जो कृष्ण ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है मानो ये धिक्कार। और गा रही है क्या गा रही है, गोविंद दामो धर्मांधवेरी गोविंद दामो धर्मांधवेरी गोविंद दामो धर्मांधवेरी गोविंद दामो धर्मांधवेरी उत्तुखले सं घंटतंदुलांच संघंटयंतो मुसलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्या जनतानुरागा गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो के शेष भाग में कृष्ण की बाल चरित्राओं का गान करती हुई दधि मंथन करती हुई। कभी सुखों को सुख पक्षियों को गोपियां अपने पिंजरे से गा करके कह रही हैं, सुना रही हैं, उनको सिखा रही हैं गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो भी मुखल से खुट रही है। शायद आप लोगों को कुटने का अभ्यास नहीं हो, मुसल उठाई नहीं सकती पांच दस किलो का, वो तो हमारे पंजा जी के यहां से खूब छटा हुआ चावल आ जाता है, आटा आ जाता है, ब्रेड भी बन करके खरीद करके ले लेते हैं, काम सुसल से फुर्सत नहीं, सब समय ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो सब ब्लड प्रेशर नहीं आता तो क्या होगा। और उस समय की स्त्रियां 10-10 किलो के मुसल से फूट रही हैं। गोविंद इस प्रकार से गोपियां झाड़ू बहारू अपने घरों में दे रही हैं, है? और चित्त कहाँ है? गोविंद रामो धर्माधरे की, गोविंद रामो धर्माधरे की, गोविंद रामो धर्माधरे की, गोविंद रामो धर्माधरे की। आंखों में आंसुओं की आंखें छलछलाई हैं, अश्रु बुंद जानो मोतियों के बिंदु पड़ रहे हैं, और परिश्रम से
पसीने
मस्तक पर खाल पर उनके मोतियों की भांति गिर रहे हैं दो ही। और यहाँ पर फूल उनकी बेली में घुसी हुई है, फिर बेली चमेली मोती के वो भी धीरे 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 बेली भी शिथिल हो गई, गिर गई, और यहाँ से अंचल हट गया और तन में होकर के गा रही, इधर में लाला उठा, मैया मैया को ऐसा देख रहा, मियाँ ने लंबी लंबी काजल की रेखाएं लगा रखी हैं, ऊं करता हुआ आंखें ऐसे न मिज करके ऐसे मिज रहा है, कभी ऐसे मिज रहा है, और अश्रु मिश्रित काजल भी चारों तरफ में, एक तो ऐसे ही करेला पीता और चढ़ा नीम पर, ऐसे ही श्यामले और उधर से और काला, ऊं करते किसी प्रकार से देखा कि मैया तो है नहीं, कहाँ गई? देखा दूर से मैया तो गदी मंथन कर रही है, वहां से किसी प्रकार से पेट के बल में बड़ी कष्ट से उठ, और जो पृथ्वी का धारण करने में गोवर्धन को उठाने में तनिक भी परिश्रम नहीं हुआ, बराह रूप में सारी पृथ्वी को उठा लिया, ऐसे मानो हाथी के दांत पर जैसे कमल का एक पुष्प रखा गया, हिरण्यकश्यप रावण इत्यादि को मारने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ, आज ये पलंग से उतर नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से उतर करके, और बच्चों का अस्त्र है, रोना बड़े जोर से रोना आरंभ कर दिया। मैया सुन एकदम तो तन्मय है, वो सुन नहीं रही, निकट में और जितने जितने बढ़ रहे हैं और उतने ही रोने की ध्वनि और बढ़ती जाती है, आंसू तो पहले तो नहीं थे किंतु अब धीरे धीरे मैया हमारा हमें दूध पिलाने नहीं आ रही, इसलिए धीरे धीरे रोना नहीं आ गया, धीरे धीरे गंगा यमुना उनके यहाँ बस्तक तल से प्रवाहित होने लगी, और उन्हें रोते रोते किसी प्रकार से मैया के निकट में पहुंचे, और दधि दंड को मथनी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मैया के सिर पर अंचल जोता उसको पकड़ा, ये लिखे क्या हो गया, तन्न होकर के करे से झट उन्हें देखा, अरे ये तो मेरा लाला रोता हुआ, बट बड़े प्यार के साथ में अपनी गोदी में बैठा लिया और अंचल से ढक करके अपना स्तन दिया, इतना दूध फिर समुद्र उसके एक बिंदु से ही भर जाए, और कृष्ण का पेट जैसे आशंख लाखों कोटि बीच ब्रह्मांड उनके पेट में समा जाए, गणेश जी भी कोटि कोटि गणेश जी जो हैं जो इसमें पेट वाले वो भी उसमें समा जाए, तो अभी पी रहे हैं कितना पिएंगे कब तक, भूख इतनी बड़ी ललक के साथ में पी रहे हैं, यशोदा का युद्ध कभी भी अनंत युगों में भी कम नहीं होगा, अब होड़ से लग गई, इसी में दूध पास में उफन रहा था, मानो यदि कृष्ण ने हमें नहीं किया तो जल से मर जाना ही अच्छा, यशोदा नहीं बेटे मैं बस झट कृष्ण को रख करके और उसको जाना चाहिए, जो कृष्ण 10,000 हाथियों के बल या 50,000 हाथियों के बल रखने वाली पुतना के जोर से हटाने पर भी स्तन को नहीं छोड़े, उसका प्राण ले लिया, नहीं हटा सकी, और यशोदा मैया ने क्या किया, सारी भगवान ने अपनी सारी भगवत्ता सारा ऐश्वर्य सारा बल लगा करके पकड़ लिया, जोर से बंदरों की भांति स्तन पकड़ लिया, मुख से पकड़ लिया, पैर से हाथों से पकड़ा, बैठ लिया, बस भगवान की सारी भगवत्ता, और उन्होंने एक हाथ से पकड़ करके बैठा दी थे दूसरे। ऐसे नहीं इनको क्रोध हुआ, भगवान को क्रोध यहाँ पर देने, ये मर्यादा पुरुषोत्तम को यहाँ लीला पुरुषोत्तम। और उन्होंने नीचे में एक लोढ़ी से, लोढ़ी कहते हैं कि इसको लोहे के पत्थर की वो मसाला पीसने के लिए, आजकल तो मसाला पीसा आ जाता है
ऊपर वाले
सिर पर के ऊपर वाले, उसे नीचे में ठुकर मारा। ऊपर में जाकर के गिराना चाहा नहीं गिरा, ऊपर में सोना चाहा मोटा नहीं हुआ, अंत में नीचे में मारा जहाँ से सारा का सारा दधी जो अविष्कार हो गया है सब बढ़ करके चला। और उसको डर करके अब डरे कि मैया आएगी तो क्या होगा, घर के अंदर में घुस गए। किंतु लोग तो लगा देता कि ठीके पर मक्खन रखा वहाँ एक ओखल के ऊपर में चढ़ करके खाने लगे। जो सदा मैया आई कहाँ गया, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है जिसे वो पकड़ा जाता है। जो सदा मैं देखा रही इसका नन्हे नन्हे पैर ये और दधी में देता हुआ चला गया है यहाँ, तो इस घर में जरूर है देखा जैसे वो खा रहा है। बस लकड़ियाँ लेकर के उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, बंदर वहाँ पर कौवे थे देखा जैसे जहाँ जो सदा मैया आई बस भरे बंद उड़े इधर उधर, कृष्ण स्मर जाते मेरी मैया आ गई, देखा तो डर के मारे भगे, जिसके डर के मारे